Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
आप गुड इवनिंग, हम हाजिर हैं मेंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कहानी बुनो। और आज है कहानी बुनो का 7वां एपिसोड। मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम क्रिएटर दीपिका जी और हमारे स्पीकर मनोज जी। आप सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम कहानी बुनो में, जहां हम सुनते हैं सुनाते हैं बेहतरीन कहानियां और बात करते हैं कहानियों की बुनाई के बारे में कि कैसे कहानियां बुनते हैं। दोस्तों, मई जून की चिलचिलाती गर्मी अभी आनी बाकी है, यानी जान जलाने वाली जेठ की दोपहरी अभी तक आई नहीं है, मगर अप्रैल के इस महीने में ही सूरज ने हमारे सरों पर धूप की चादर तान दी है और दर्जा हरारत को इस कदर बढ़ा दिया है मानो झुलसा ही देगा। इस झुलसन से राहत देने के लिए कुदरत ने हमारे लिए वैसे तो आम, संतरे, अंगूर, तरबूजे, खरबूजे जैसे कई रसीले फलों का तोहफा भेज दिया है, मगर इन सब से राहत मिले भी तो कितनी भी देर भला। फिर तो एक ही उपाय बचता है ना, और वो है ठंडा पानी। ठंडा पानी गले से उतरकर जब शिकम सर होता है ना, तो ऐसा लगता है जिस्म की दहकती जमीन पर मूसलाधार बारिश हो गई हो। जैसा कि एक शायर ने भी कहा है, क्या धूप थी कि जमी जल के राख हो जाती, क्या धूप थी कि जमी जल के राख हो जाती, बरस के अब के बड़ा काम कर गया पानी। दोस्तों, शिद्दत की भूख से शिद्दत की प्यास बड़ी होती है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, और हो भी क्यों ना, कुछ लम्हे के लिए हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन प्यास हमेशा से नाकाबिले बर्दाश्त ही रही है। पुरानी कहानियों में जंग में लोग जब लड़ते लड़ते थक जाते थे तो खाना नहीं मांगते थे, पानी मांगते थे, क्योंकि भूख लगी हो तब भी जांबाज कुछ देर लड़ सकता है, लेकिन उसके होठों पर अगर प्यास ने दस्तक दे दी तो फिर मुश्किल है कि वो अपने दुश्मन पर एक अदद वार भी सही तरीके से कर सके। इसलिए 1000% सच है कि शिद्दत की भूख से शिद्दत की प्यास बड़ी होती है, यानी वो एक तिश्नगी बन जाती है, और ये तिश्नगी दरिया और समंदर से भी बड़ी हो जाती है एक वक्त में आकर। तभी तो डॉक्टर राहत इंदौरी, मशहूर शायर, कहते हैं कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। सचमुच प्यास होती ऐसी है, बहुत बड़ी। हालांकि मैंने सुना है कुछ लोगों को ये कहते हुए भी कि भूख का एक जायका होता है, मगर प्यास का कोई जायका नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्यास का भी एक जायका होता है, और वह है पानी। पानी ही प्यास का जायका है। यह अलग बात है कि आजकल लोग कोक, पेप्सी, माजा या बाजार में तमाम तरह के तरल जायके मौजूद हैं, लेकिन शिद्दत की प्यास अगर बुझती है तो सिर्फ पानी से ही बुझती है ना। यह बात मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त रोजे चल रहे हैं, दिन में ऑफिस में काम करते हुए हलक को ठंडे पानी की ऐसी शिद्दत उठती है कि क्या ही कहें। जी करता है कोई फ्रिज से निकाल कर ठंडे पानी की पूरी बॉटल मेरे मुंह में उड़ेल दे। इस बात को शिद्दत से महसूस करते हुए मुझे यह समझ तो आ गया कि ठंडे पानी की कहानी में खाली बॉटल का हिस्सा कुछ ज्यादा होता है। तभी तो फ्रिज में अगर बॉटल खाली हो तो फिर प्यास की गहराई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है ना मनोज सर? और दिल बेचैन होके कहने लगता है कि कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है,
दरिया लगता।
तो आइए इसी टॉपिक पर हम सुनते हैं मरियम जी की लिखी एक कहानी दीपिका जी की आवाज में। दीपिका जी।
हाँ जी, सबको नमस्कार। आज हमारे पास बहुत ही खूबसूरत कहानी आई है जो हमें मरियम जी ने लिख के भेजी है। मरियम जी बांग्लादेश से हैं और उनकी कहानी का नाम वही जो हमने दिया था, ठंडे पानी की कहानी। तो अब शुरू करती हूँ उनकी लिखी हुई कहानी। सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती है वो, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा और बर्तनों की सफाई भी, कभी कभार बच्चों की फरमाइशें भी कि आंटी ये कर दो, आंटी वो कर दो, लेकिन वो अपने चेहरे पर कभी थकन की शिकन नहीं लेके आती। जिस्म है तो थकना लाजमी है, पर क्या करें, लेकिन दूसरों को उसका एहसास ना होने देना ही बड़ी बात है। और उससे आगे एक काम छूट जाए तो मालकिन के 1000 अल्फाज भी सुनने पड़ते हैं और दिल पर पत्थर रखकर काम करने पड़ते हैं। दिल दुखता है तो काम की बला से। गर्मी आते ही सुबह से लेकर शाम तक सबके गले को तर करने के लिए फ्रिज में पानी की बोतल भरना भी उसकी ही जिम्मेदारी है। उसे भी हक है कि कभी कभार अपने भरे फ्रिज का बोतल निकाल वो भी गला तर कर ले, लेकिन कभी वक्त मोहलत नहीं देता, कभी फ्रिज उसे मौका नहीं देता। फ्रिज खाली हुआ नहीं कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फरमाइशें आती हैं, जल्दी से पानी भरो, ठंडा पानी खत्म हो गया है। और बोतल भर जाए तो ना जाने कैसे वो कुछ देर में फिर खाली हो जाती है, शायद ठंडे पानी की प्यास कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। सुबह आकर फ्रिज में सारी बोतल भरने के बाद जब वो किचन में गई तो वहां मालकिन ने कई सारी हिदायतें दे दी। मेहमान आ रहे हैं, थोड़ा खाना ज्यादा बनाना होगा, इसलिए ज्यादा सब्जी काटनी है, आटा भी ज्यादा गूंद लेना। खैर, वह जुट गई सारे इंतजाम में। एक चूल्हे पर दूध उबलने रखा, आटा गूंदने लगी, लेकिन एक तो गर्मी, ऊपर से किचन में चूल्हे की आंच की तपिश ऐसी कि उसे बार बार प्यास लगाती। किचन में न पंखा न कूलर, गर्मी कैसे बर्दाश्त हो भला। ये बोतल मेरे ही प्यास पर खाली क्यों मिलता है कम वक्त। ये तब हुआ जब थोड़ी देर बाद सब्र करने के बाद वो फ्रिज की तरफ बढ़ी, एक बोतल पानी निकालकर पी ले तो कुछ राहत मिले, लेकिन इतनी देर में पूरा फ्रिज खाली। फिर वो झल्लाती हुई नॉर्मल पानी पीकर बोतल भरने चली गई। दोपहर में जब मेहमान आए तब मालकिन ने कहा कि मेहमानों के लिए शरबत बना दो, ठंडा होना चाहिए। लो, फिर फ्रिज खोला तो बच्चे तब तक सारी बोतल खाली कर चुके थे। जैसे तैसे फ्रीजर से बर्फ निकाली और रूह अफजा तैयार करा और मेहमानों में परोस दिया। फिर उसे लगा अभी लंच के लिए भी पानी चाहिए और वो भी ठंडा, तो फौरन सारी बोतलें भरी और रख दी फ्रीजर में भी, ताकि खाने के वक्त किसी को कोई तकलीफ ना हो और कोई शिकायत ना करे कि ठंडा पानी ना मिले और मेहमान नवाजी में कोई कमी ना आए। खैर, बड़ी ही इत्मीनान से सबने लंच किया और सबके लिए ठंडे पानी के इंतजाम में कोई कमी नहीं आई। लेकिन वो एक घूंट ठंडे पानी को तरस गई, क्योंकि सबके सामने अब फ्रिज का ठंडा पानी तो नहीं निकाल के पी सकती। काम में इतनी व्यस्त कि पानी पीने का ही होश नहीं, तो ठंडा तो बहुत दूर की बात। हाँ, भरना नहीं भूलती, क्योंकि औरों को जो चाहिए ठंडा पानी। मेहमानों में एक 10-12 साल का लड़का उसे काम करते हुए देख रहा था। उस लड़के की माँ नहीं थी, वो अपने अंकल आंटी के साथ मेहमान बनकर आया था। सबके खाने के बाद जब वो काम करने वाली पसीने से भीगी हुई किचन में जाकर थोड़ा रिलैक्स हुई तो लड़का फ्रिज से एक ठंडी बोतल लेकर किचन में दौड़ा दौड़ा आया और उसको बोतल पकड़ाते हुए बोला, आंटी पानी पी लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। ये सुनते ही काम वाली के चेहरे पर एक सुख उतर आया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। शुक्रिया। ये थी ठंडे पानी की कहानी मरियम जी द्वारा।
बहुत खूबसूरत नरेशन किया आपने दीपिका जी, और बहुत खूबसूरत कहानी भी है। थोड़ी सी मुश्किलें आई हम लोगों को एडिट करने में, लेकिन फिर फिल्म अच्छी बन गई कहानी। मनोज सर हमारे साथ हैं, सजीव सर जुड़ चुके हैं और आज मरियम जी अभी तक नहीं
ज्वाइन, किसी कारणवश मरियम जी ज्वाइन नहीं कर पाए। हम चाहते हैं
दीपिका जी, उन्होंने मरियम जी ने मैसेज किया है कि आप उन्हें रिक्वेस्ट भेजें, शायद
मैंने वो कुछ भेजा था उनको, मैं दोबारा करती कोशिश। तब तक हम अपने स्पीकर्स से बात करते हैं।
हाँ, वो जो होस्ट है वो ही भेज पाएंगे, उनको इनवाइट कर पाएंगे।
हाँ, तो दीपिका जी भेजें आप।
होस्ट कैन इनवाइट और वो स्पीकर पैनल पे ज्वाइन कर पाएंगे। हालांकि मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन कहानी बहुत ही खूबसूरत हुई है। और जैसे कि आपने कहा कि ये थोड़ा सी इसमें मुश्किलें थी, उसका रीजन ये रहा था कि मरियम साहिबा जो है वो बांग्लादेश से है और उनके उनके जो تھاٹ پروسیس ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھی, تو ابھی بھی میں ان کے ساتھ تھا ایک کمرے میں, تو تھوڑا ڈفرینٹ وہ لہجہ بھی تھا اور سوچ کا بھی تھوڑا سا الگ تھا, لیکن واقعی سچ میں کہانی اتنی خوبصورت ہو پائی ہے اور واقعی, اور دیپیکا جی جس طریقے سے آپ نے پڑھا اور وسیم صاحب جتنا کام آپ نے اس سٹوری پہ کیا, کیونکہ اتنی ایموشنل سٹوری ہے اور واقعی دل تک پہنچتی ہے کہ پانی کا کیا مہتو ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت,
بہت بہت شکریہ منو سر, آپ کی آپ کا کمنٹ ہمارے لیے بہت جو ہے قابل مفید ہوتا ہے ہمیشہ ہی, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ.
اور وسیم جی, یہ راملا جی نے, مریم جی نے کہانی بھیجنے سے پہلے ہی ہمیں بولا تھا کہ میری تھوڑی سی گرامر میں پرابلم ہوگی, آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بھیجیے. تو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس وشے کو چنا, شاید کوئی اور ہوتا تو شاید اپنی بات کرتا ٹھنڈے پانی کی یا اپنی پیاس کی, پر سب سے بڑی بات کہ انہوں نے دوسرے کی پیاس کا احساس ان کو ہوا, اور وہ بھی وہ ایک کام والی کے لیے, جو کہ شاید ہی کوئی سوچتا ہوگا اس چیز کے لیے زیادہ. تو مریم جی, آپ اگر جڑ پائیں اسپیکر میں, میں نے آپ کو انویٹیشن بھیج دیا, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں.
کہانی بننے کے سلسلے میں یہی تو سب سے خوبصورت بات ہے نا دیپا جی, کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپک کو ہم جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی ایموشنز ظاہر کرتے ہیں کہانیوں کے ذریعے, اور ایسے ایموشنز بن کے آتے ہیں کہانیوں, ایسی بن جاتی ہے جسے لگتا ہے کہ ہاں یہ کہانی ضرور بننی چاہیے تھی. تو اس لیے اچھا رہا. سجیو سر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو سجیو سر, آپ ہمیں سن رہے ہوں اور پلیز تھوڑی اپنی رائے ظاہر کریں اس کہانی پر, کیسی لگی آپ کو کہانی؟
جی کوئی پروگرام میں گلچ ہے یا مجھے آواز نہیں آ رہی ہے؟
سر آپ کی آواز نہیں آ رہی
ہے. سجیو صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, میری آواز ایک بار آپ اب آئی, اب آ رہی ہے.
تو میں کہہ رہا تھا کہ وسیم بہت ہی اچھی کہانی, اور کیونکہ جو ٹاپک آپ نے لوگوں نے دیا تھا اس پہ سوچنا تھوڑا سا مشکل تھا, کیونکہ اس بار ٹاپک بہت آسان نہیں تھا میرے حساب سے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس انٹری آئی ہے بنگلہ دیش سے, اور مریم جی جو جڑی ہیں, اور مریم جی جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے ادھکتر پروگراموں میں شامل ہوتی ہے, تو بہت اچھا لگا کہ آج وہ ایز اے پارٹیسپینٹ یہاں شامل ہو رہی ہے. بہت لیکن دکھ ہے کہ وہ جڑ نہیں پا رہی ہیں کسی وجہ سے, اگر وہ آ جاتی تو ہم ان سے بھی کچھ سنتے, ان کو سننا بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور واقعی یہ کہانی, اور جس طرح سے دیپیکا آپ نے پڑھی اور وسیم جس طرح سے آپ نے اس کو کریکشن کیا, جی بتائیے وسیم.
سر آپ کی آواز گلیچ کر رہی ہے, مطلب آواز آ نہیں رہی ہے.
اچھا ہلو, ابھی نہیں آ رہی ہے کیا؟
ہاں جی بالکل ابھی کلیئر ہے.
ہاں ہاں, تو میں بس وہی کہہ رہا تھا کہ مریم جی جو ہے ہمارے لگ بھگ ہر سبھی پروگراموں میں آتی ہیں, اور بہت اچھا لگا کہ آج انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس پروگرام میں, اور بہت یہ بھی ہے تھوڑا سا دکھ اس بات کا ہے کہ وہ نہیں جڑ پا رہی ہیں کسی وجہ سے, بٹ ڈیفینیٹلی ہم ان سے سننا چاہتے ہیں. تو مریم جی اگر آپ کمنٹس میں لکھیں اپنے ویوز, ہم لوگ ان کو مجھے لگتا ہے کہ دیپیکا جی
بالکل ہم شامل کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ایک ریئل کہانی ہے, مجھے بھی لگا تو اسی وجہ سے میں بات کرنا چاہتی تھی ان سے کہ کیا ان کو یہ کیسے کیا لگا, کیا انہوں نے سوچا اس بارے میں لکھنے کے لیے. چلیے اب اگر وہ کمنٹس میں لکھتے ہیں تو میں وہ کرتی ہوں.
جی
جی جی کہیے وسیم جی.
مریم صاحبہ
کہہ رہا ہوں کہ وہ کہانی ریئل ہی ہے,
میں یہ کہہ رہا تھا کہ مریم,
ہاں جی انہوں نے نیچے کمنٹ میں لکھا ہے, ہاں جی کہ ہمارے گھر آنٹی ہیں کام کرنے والی, شاید انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا, اسی پر یہ کہانی لکھی گئی ہے, اور وہ روز پانی بھرتی ہیں, اور یہی سب دیکھ کے مجھے لگتا ہے ان کو یہ انسپیریشن ملی ہوگی, جو ہم نے ٹاپک دیا وہ ان کو لگا ہوگا کہ اس پہ ہی لکھنا چاہیے. اور بہت خوبصورتی سے مریم جی آپ نے اس کو لکھا ہے, آپ کا میٹر بہت اچھا تھا.
بہت بہت شکریہ مریم جی کہانی لکھنے کے لیے, ہمیں لگ گیا تھا سمپادت کرتے وقت بھی کہ کہانی آپ نے ریئل ہی اٹھائی ہے, اور ایسا ہمارے تمام شہروں کے عام گھروں میں ایسا اکثر ہوتا ہے, جہاں پہ بائی اور یا کھانا بنانے والے لوگ کام کرتے ہیں वो किसी न किसी मुश्किल में भी रहते हैं, तब भी वो काम करते रहते हैं। उनकी प्यास की शिद्दत होती है लेकिन वो कह नहीं पाते, एक शर्म, एक झिझक, एक लिहाज होता है उनके अंदर। तो इस कहानी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कम से कम घर वाले अपने काम करने वाले लोगों के साथ इस तरीके से पेश आए, अपने परिवार का हिस्सा माने, ताकि वो उनकी प्यास की शिद्दत को भी वो समझ सकें, उनके जरूरतों को समझ सकें कि हाँ उन्हें भी प्यास लग सकती है। तो इस एतबार से बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत कहानी आपने गढ़ी मरियम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दीपिका जी अगले टॉपिक पर चलें। हेलो दीपिका जी।
हेलो, हाँ जी,
अगले टॉपिक पर चलें आप प्लीज।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा प्यास की कीमत जो है बहुत बड़ी होती है, बहुत, जब मतलब जब बहुत प्यास लगी हो और जिसको लगी है तो पानी की कीमत वही जान सकता है। इसी तरह मुझे ऐसे लगता है सांसों की कीमत भी वही जान सकता है जिसने कभी अपनों के लिए सांसें खरीदी हो।
आहा, क्या बात कह दी आपने, बेशक
हमने बिल्कुल कोविड के टाइम देखा है कि हमें एक्चुअल में सांसें खरीदनी पड़ी हैं लोगों के लिए, और कितनी मारामारी थी शायद, जिसको बिल्कुल जिस पर बीती है वो इसकी कीमत बहुत अच्छे से जानता है। और मुझे लगता है ये सब होने के बावजूद भी कई लोग उसका मोल नहीं जान सके आज तक। शायद इंसान को मुफ्त में या उपहार में मिली चीजों की ना कीमत मालूम नहीं होती, या उसकी कीमत उनको लगती ही नहीं क्योंकि वो मुफ्त में मिली होती है।
तो इसका मुझे, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आप आज ऑक्सीजन टॉपिक देने वाली हैं।
कुछ मिलता जुलता है, जैसे मैंने कहा कि कीमत नहीं पता होती, लेकिन प्रकृति के दिए अनमोल उपहार की कीमत भी हमें नहीं पता होती, जो कि हमें फ्री में मिलती है, वाकई ऑक्सीजन जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है।
टॉपिक बताएं।
बिल्कुल, पेड़ पौधों से मिलती है। और पहले टॉपिक बताने से पहले मैं उसकी कीमत जरूर बताना चाहूंगी, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि जो मैं टॉपिक देने वाली हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए कि एक पेड़ से हर साल 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन हमें मिलती है। और पूरे 50 साल के बहुत बड़ी, और कीमत उस पेड़ की जानिए जिसकी जीवन शायद 50 साल का है, वो पूरे जीवन में अपने $32,000 की कीमत की ऑक्सीजन देता है।
इस पर मुझे कुछ कहना है दीपिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि दिन इस तरीके से हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उसमें यही एक जरिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ऑक्सीजन के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल,
न सिर्फ अपने घर के गमलों में बल्कि गली मोहल्लों में जहां कहीं भी पेड़ लगाने की सहूलत मिल सके पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा
लगाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम करते कुछ नहीं है, दोष दे देते हैं भगवान को। बहुत गर्मी है, गर्मी में जी बहुत गर्मी हो गई, सर्दी में बहुत सर्दी है, बरसात नहीं हो रही, कारण क्या है? वो हम ही हैं। तो इस बार का टॉपिक मैं ये देना चाहूंगी ये कहते हुए कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम।
तो
आओ पेड़ लगाएं हम, ये टॉपिक इस बार का होगा। आप किसी भी तरह से उसको लिखिए, जैसे मैं हर बार आपको बस एक छोटा सा एक वो देना चाहती हूँ टिप्स की, जैसे मैं करती हूँ। आप फल खाइए, फ्रूट खाइए, भगवान ने पेड़ों से बहुत चीजें दी हैं, लेकिन प्रकृति की दी हुई मुफ्त की चीज हम करते हैं ना, फेवर किसी का लेते हैं, हम किसी ना किसी रूप में लौटाते हैं ना, तो इसी तरह हम प्रकृति का क्यों भूल जाते हैं? जब उनसे हमें चीजें मिल रही, हमें उनको लौटानी है। आप किसी अब संस्कृति में देख लीजिए, हिंदू संस्कृति में देख लीजिए, अंतिम समय में कितने पेड़ों की जरूरत होती है चिता के लिए। अगर हम ये सोचें हम कितने पेड़ साथ लेके जा रहे हैं, और अगर हम उतने छोड़ जाएं तो कितनों का फायदा
है। कितनी खूबसूरत बात है, सचमुच पेड़ों का हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल है दीपिका जी। जिस तरह से दुनिया भर में जंगल काटे जा रहे हैं,
बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ, फल खाइए
उसकी वजह से।
हाँ बिल्कुल, जो फल खाइए, बीज आप 2-4 गमले घर में ऐसे रखिए, जो सीजनल फ्रूट के बीज उसमें डाल दीजिए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे।
दीपिका जी मैं तो ये कहूंगा कि गमलों के साथ साथ ही गली मोहल्ले जहाँ भी सहूलत मिल सके वहाँ पेड़।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताना चाहती हूँ,
जरूरत है हमारी।
हाँ ये आप अगर करेंगे ना, जैसे आपने ये कर लिया, आप दे दीजिए, आप मंदिरों में जरूरत है, रोड पे जरूरत है, आप एनजीओस को दीजिए, वो बिल्कुल सही जगह पर लगाएंगे आपके लिए, आने वाली अपने लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए कर दीजिए। अगर आपको लगता है हम ही क्यों, तो आप अपनी आने वाली जनरेशन के लगाइए, मत सोचिए दूसरों के बारे में, अपने परिवार अपनी जनरेशन के बारे में सोचिए। तो
मैं एक दोपहर पिछले सप्ताह, जी बहुत खूबसूरत टॉपिक है, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह संडे को मैं ऐसे ही दोपहर में निकला फल लेने के लिए, तो सब्जी और फल जो लगाने वाले हैं ठेली पर लेके चलने वाले हैं, उनको देखता हूँ कि वो भरी दोपहरी में गलियों में जगह जगह टहलते हुए बेचते हैं, लेकिन दरख्त नहीं होते, पेड़ नहीं होते, तो वो धूप में वे बेचते हैं। मुझे लगता है कि शहरों में जो घरों के सामने पेड़ कम हो रहे हैं, वो भी एक तरह की समस्याएं पैदा कर रही हैं। ये कम मतलब पेड़ अपने घरों के सामने भी लगाए जाने चाहिए, जहां सहूलत हो, जहां जगह हो, लगाए जाने चाहिए। तो ये भी एक इससे भी एक सहूलत मिल जाएगी शहरों को कि वहां गर्मी कम होगी और गर्मी की तपिश कम होगी, पेड़ होगा तो लोग आने जाने वाले लोगों के लिए साया मिल सकेगा, फल फूल तो मिलेगा ही, है कि नहीं? तो
बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है जिसको हम बहुत शायद लाइटली ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे जब हम ये दोष देते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ये सब कारण हम ही है, अभी भी वक्त है, अगर हम कर पाए तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रकृति को वापस।
अभी ही ये वक्त है क्योंकि दुनिया भर में जंगल काटे जा रहे हैं और समस्याएं बढ़ रही हैं और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो ये अभी ही जरूरत है, ये वक्त की जरूरत है, इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। और मुझे लगता है दीपिका जी कि हम कहानियों के जरिए पेड़ लगाने की इस मुहिम को
बिल्कुल एक मैसेज, कहानी के साथ एक मैसेज होना जरूरी है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप।
और मैं चाहूंगा कि सजीव सर हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस टॉपिक से मुतालिक कुछ अपनी राय जाहिर करें।
हाँ वसीम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, मतलब पेड़ लगाना।
टॉपिक ये है कि आओ पेड़ लगाएं हम, जैसे कि हमने ठंडे पानी की कहानी रखी थी ना, तो आओ पेड़ लगाएं हम, यानी इससे रिलेटेड हम बहुत सी खूबसूरत कहानी गढ़ सकते हैं। सब मसलन मतलब एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे घर के सामने एक पेड़ है और उसे किसी न किसी वजह से कोई घर बनाने को लेकर या चबूतरे बनाने को लेकर या कुछ भी वहां करने को लेकर उसको काट दिया जा रहा है, वहां एक समस्या खड़ी हो गई कि अब वहां साया नहीं मिल रहा है, छाया नहीं मिल रहा है। तो यहां से भी एक कहानी बुनी जा सकती है कि ये कोई ऐसा मैसेज दिया जा सकता है कि हम पेड़ काटे नहीं बल्कि पेड़ लगाएं, और अपने घरों में छज्जों पर जहां कहीं भी हमें जगह मिले वहां पे गमलों में पेड़ लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं, ताकि उससे ऑक्सीजन का लेवल हमारे घरों के आसपास बना रहे। ये मैसेज देने के लिए एक खूबसूरत कहानी गढ़ी जा सकती है, इसलिए हम ये
समझ गया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आओ पेड़ लगाएं हम, है ना, यही हमारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा है।
ये विषय हमने दिया है, आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं कि लाइक अगर आप पेड़ लगाएं तो कैसा रहेगा, या पेड़ ना होंगे तो कैसा लगेगा आपको, तो आप मन जो आप सोच पाते हैं पेड़ से रिलेटेड, या एक बहुत खूबसूरत पेड़ है, आम का पेड़ है, पेड़ की इम्पोर्टेंस क्या है आपके जीवन में, किसी कभी कभी होता है ना कोई पेड़ आपके साथ जीवन में बहुत जुड़ा होता है, शायद वो घर के बाहर है, स्कूल में है, गांव में है, तो कोई भी कहानी उससे रिलेटेड आप, हाँ लेकिन उसमें ये मैसेज होना चाहिए कि आपको भी ऐसे ही अगली जनरेशन के लिए या अपनी धरती को सुंदर बनाने के लिए आपको पेड़ लगाने, तो आप किसी भी रूप में इस कहानी को लिख सकते हैं।
बिल्कुल, कहानियां हमें लिख भेजें 500 से 700 शब्दों के बीच, और हमारा मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com kahanibuno@gmail.com। इस पर अपनी कहानियां भेजें, अपनी राय मशवरे भी भेज सकते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस सर्किल से रिलेटेड, कि हमें और कितना बेहतर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें आपके राय और मशवरे की भी जरूरत है कहानी के साथ साथ। जी दीपिका,
और ये तो कहानी मंडे तक पहुंच जानी चाहिए हमारे पास, और मनोज जी से मैं चाहूंगी इसका विषय के बारे में अगर वो कुछ कहना
फाइनल कमेंट दे।
ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और मैं ये कहूंगा कि मैं इतना खुश हो रहा था, आई वाज स्माइलिंग आपको सुनकर के दीपिका जी और वसीम साहब को, कि इतना खूबसूरत जो है आपने ये टॉपिक दिया है, तो वो एक वो कविता से याद आ जाती है, कितना विशाल घना वृक्ष, कितना विशाल घना वृक्ष आज मैं हो गया हूँ, फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ, कभी कभी मन में, पर कभी कभी मन में एकाएक विचार करता हूँ, आप सब मानवों से एक सवाल करता हूँ, क्या दूसरे पेड़ों की भांति मैं भी काटा जाऊंगा, अन्य वृक्षों की भांति क्या मैं भी वीर गति पाऊंगा, कितना विशाल घना वृक्ष आज मैं हो गया हूँ, फल फूलों से लदा पौधे से वृक्ष हो गया हूँ।
बहुत
क्या, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। 15 मिनट बचे हैं और हम सभी दर्शकों का, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, सभी सुनने वालों का।
अच्छा वसीम जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, इससे ये है कि पेड़ की आत्मकथा भी लिख सकता है कोई, तो तैयार करिए अपनी कहानियां।
If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.